परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम या मेधाम देव गणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कल हमारी भूमिका 3 दिनों में पूर्ण हो गई, कुछ पाठ भी हो गया था। आज जो विषय चलेगा उपसर्गों का, इसमें आप ये मंत्र देख रहे हैं, पहला ही उपसर्ग आ है, इति आ इति अर्वागर्थ है। अर्वम अंचति इति अर्वाक, जो अपनी ओर चाहता है कि कोई चीज हमारी ओर आकर्षित हो, उसको जो चाहता है वो अर्वाक है, और ये अर्वाक इसका अर्थ है उपसर्ग का। तो इसमें वैसे तो निरुक्तकार ने मंत्रों को नहीं दिया हुआ है उपसर्ग के, किंतु हमारा कुछ ऐसा है कि जितने हम कर सकते हैं, कुछ मंत्रों में व्याकरण लगा लिया जाए, कुछ ब्राह्मण लग सकता है तो वो भी लगा लिया जाए। इससे क्या होगा कि जो वेदार्थ में प्रवृत्ति अपने आप हो जाएगी, वो यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे। आज ही आप देखेंगे हम कुछ मंत्रों में व्याकरण लगाएंगे, कुछ ब्राह्मण के बारे में भी बताएंगे कि मंत्र का इसका अर्थ ब्राह्मण की दृष्टि में क्या हो सकता है। तो कल जैसे मैंने कहा था, सभी मूल संगीता लाए होंगे, यहाँ से मिल चुकी है, हाँ, तो उसको निकाल लेंगे। उससे पहले किसी को कल के पाठ में कुछ पूछना है तो उस पर चर्चा कर लें, थोड़ा मैं भी पूछ लेता हूँ, और फिर सीधा जो थोड़ा सा पाठ करके उपसर्ग का विषय आ जाएगा उसको प्रारंभ करते हैं। और याद कर रहे हैं आप, क्योंकि 1 महीने का समय है, सबको याद ये होना चाहिए, क्योंकि जब द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद से हम चलेंगे तो निघंटु का मुख्य कार्य प्रारंभ हो जाएगा, गौ शब्द का निर्वचन वहां से प्रारंभ होगा। उससे पहले सभी को निघंटु याद होना आवश्यक है, इसमें छूट नहीं है। दोनों उसमें माने, जैसे वहां भी दोनों माना है, उसमें पुरुष विद्या नित्यत्वात भी माना है, नित्यत्वात भी माना है। कई जगह पुरुष विद्या नित्यत्वात कहेंगे तो परमात्मा हो जाएगा, और यदि अनित्यत्वात तो कहेंगे तो इसमें घट जाएगा, इसमें घटने में कुछ नहीं है। कई बार लोगों के मन में पाठ भेद है, इसमें कई जगह ऐसे
ये नाम आप क्या प्रयोग करें लोग व्यवहार में, उसी प्रकार से देवता विधान
कहा है। मंत्र जो देवता है, जैसे मंत्र है तो मंत्र में तो कोई ना कोई देवता है ही, तो वो जो देवता है वो भी ऐसे आपस में, उनके लिए भी ऐसा 4 प्रकार के शब्दों का विनियोग होता है। मंत्र तो एक वाक्यों के समुदाय का नाम हुआ, उसमें जो रहने वाला वो देवता, उस देवता के बारे में वहाँ चर्चा है। जैसे मैंने कल बताया था इंद्र आगच्छ हरि आगच्छ, यही मंत्र है, वायव आया ही दर्शता ही में। तो जैसे हमारे यहाँ प्रयोग हो रहे हैं, उपसर्ग का भी प्रयोग हो रहा है, सारी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, नन्नू नमस्ति न स्वयं निपात का प्रयोग हो रहा है, तो जैसा ये हमारा यहाँ होता है ऐसा वहाँ मंत्रों में भी ये विनियोग होता है। मनुष्य के समान ही जो है देवता है, उनका भी अभिधान कथन है, जैसे यहाँ हम चतुष्टु का प्रयोग करते हैं वैसे वहां भी होता है। तो आप कल बात चली थी ना स्वामी जी की, शब्द को पहली बात तो किसी ने बनाया नहीं है आज तक, जो वे महर्षि दयानंद ने भी लिखा हुआ है, जैसे भाष्यकार ने भी कहा है कि ने तद्वत कुंभकारम कुलम गत्वा कुरु घटम कार्यम अनेन करिष्यामि, न तद्वत वैयाकरणम कुलम गत्वा कुरु शब्दान प्रयोगशीति, कोई भी व्यक्ति शब्द को किसी वैयाकरण के घर में जाके नहीं बनवाता है, परंपरा से प्राप्त हुई है भाष्यकार ने कहा, ये भी एक नित्यत्व में हेतु है। दूसरा आदित्यवत आदि काफ़ी महाभाष्य में चर्चा हुई कि जैसे यहाँ है ऐसे वहाँ भी दिखाई देता है, अनेक जगह शब्दों का प्रयोग एक साथ हो रहा है तो वो बनाया नहीं जा रहा है, वो जो जो है तान एव अर्थम गृहत्वा गृहत्वा शब्दान प्रयुक्त, अर्थ मन में है उसको ले लेके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। स्फोट शब्द ध्वनिस्तु शब्द गुण है, ये भी इसमें एक प्रमाण है तप्रस तत्कालस्य सूत्र के ऊपर कि स्फोट शब्द स्फुटति अर्थो अस्मादिति स्फोट, जिससे अर्थ का प्रकाश होता है और वो मन में पहले से है, तो परंपरा से वेद के शब्द किसी ने बनाए नहीं है, कोई बनाए नहीं है किसी ने, तो ईश्वर की देन है, वो भी नित्य है। हाँ नित्य है क्योंकि वो इसलिए कहा गया था कि आकाश गुण शब्द आकाश का गुण है और आकाश जो है वो व्यापक है तो सब जगह फैला हुआ है, तो शब्द भी सब जगह फैला हुआ है, एक साथ हजारों व्यक्ति एक शब्द को प्रयोग कर रहे हैं तो व्यापक तो मानना ही पड़ेगा, बाकी वो नित्य ही है वैसे तो व्यापक का अर्थ नित्य भी होता है। हाँ नित्यता भी होता है उसमें कोई संदेह नहीं है। विशेषण व्याप्त क्या है, अगर आप हर चीज का निर्वचन करेंगे तो कोई व्याप्त है कस्मात, विशेषण असमंतात् आप्तः सर्वत्र प्राप्त इति व्याप्त, वही अर्थ है, तो ये सब जगह प्राप्त हो रहा है इसलिए वो है। और नित्य नित्य का भी अर्थ वही है एक प्रकार से, जो नित्य शब्द व्यापक हो ये जरूरी नहीं है, जैसे आत्मा व्यापक नहीं है किंतु वो नित्य है, किंतु शब्द जिसका गुण है वो आकाश भी व्यापक है इसलिए शब्द भी व्यापक है, बाकी जो चीज नित्य होती है तो वही व्यापक भी हो ये जरूरी नहीं है। बाकी इसको अगर नित्य ही मान रहे उसमें भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि विशेष रूप से सब जगह प्राप्ति है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई किसी से बनवाने नहीं जाता है, शब्दों का प्रयोग निरंतर हो रहा है इसलिए शब्द जो है नित्य है, और आकाश का गुण होने से आकाश क्योंकि व्यापक है तो ये भी। तो मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ, मुझे भी पता लगे कि क्या है। हाँ जी भैरूलाल जी, ये बताइए छह भाव के विकार होते हैं जो क्रिया के छह विकार होते हैं, तो इसमें अस्थि ये दूसरा है, इसको आप कैसे समझाएंगे कि अस्थि क्या है? जी नहीं वो तो विपरिणमते हो जाएगा, अस्तित्व कैसे स्वीकार करेंगे आप, जायते अस्ति विपरिणमते, ये जो छह चीजें थी तो जायते अस्ति, अस्ति को कैसे समझाएंगे कि अस्ति क्या है? हाँ विद्यमान को इस अस्तित्व को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया। हाँ विनश्यति विक्रम जी, विनश्यति को कैसे समझाएंगे, क्या है पूर्व भाव को नहीं कह जो है अपर भाव के ये आदि को कहता है जो प्रारंभ होगा उसका अंतिम क्रिया का विनाश का, तो इसको कैसे समझाएंगे कि विनाश कहाँ से प्रारंभ हो गया, विनश्यति क्या है? नहीं विनश्यति इति अपर भावस्य आदि माचष्टे, अपर भाव के आदि को कहता है, वो आदि को कैसे मानेंगे आप कि भाई यहां से विनाश प्रारंभ हुआ है? जैसे ठीक भाई जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते, अपक्षीयते तो ठीक है बुढ़ापे के लक्षण वो सारी चीजें हैं, विनश्यति कहाँ से प्रारंभ करेंगे कि यहाँ से विनाश प्रारंभ हो गया, जैसे सृष्टि में तो ये था कि भाई जब परमाणुओं की वापसी लौटने लगे वो वर्षों में जाके नष्ट होगा, तो तीन कुछ लोगों के मत में तीन चतुर्युग ही लगती हैं, तो किंतु वो तो पूरा तो वापस परमाणु में इतने तीन चतुर्युग में जाएगा, किंतु उसको मानेंगे कहाँ से कि जहाँ से परमाणु वापस लौटने प्रारंभ हुए वहीं से ऊपर प्रभाव को वहीं से मानेंगे। और इसमें एक बात और थी कि वेद की अपेक्षा क्यों है, क्या वचन है, वचन तो याद किया होगा अभिषेक जी, पुरुष विद्या इसको कैसे समझाएंगे कि ये क्या है। भाई तैयारी करो, ऐसे कैसे काम चलेगा, बहुत सरल था तो कितनी व्याख्याएं हुई थी। हाँ जी बलदेव जी, पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेद, ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इससे। भाव मत बताओ ना, शब्दों का अर्थ करके बताओ, भाव तो लगभग ठीक है पर क्या कहना चाह रहे। पुरुषस्य या अविद्या तस्य अनित्यत्वात्, पुरुष की जो जो विद्या है वो अनित्य है, कैसे समझाएंगे कि पुरुष की विद्या अनित्य कैसे है। जी
पढ़ना पड़ता है, स्वाभाविक से प्राप्त नहीं है और भूल जाते हैं, उतना पढ़ नहीं पाए
जी।
सृष्टि का जो जैसे सृष्टि का बनना है, नाश होना हमें प्रत्यक्ष देखा नहीं
है जी,
इसलिए पुरुष की विद्या
जी। तो कर्म संपत्ति मंत्र वेद, इसका क्या अर्थ है आगे का।
तो इसलिए वेद में उसको बताया गया है।
नहीं नहीं, कर्म संपत्ति मंत्रो वेद, इस शब्द के क्या अर्थ हैं। चंद्रगुप्त
जी, कर्म का संपादन किस प्रकार से करना है तो वेद में मंत्र के द्वारा कहा गया,
यथा
उन्हें करना है व्यवहार में कैसे क्या कर्म करने हैं वो सारे वेद में बताए हुए हैं, और जैसे अर्थ है जो प्रयोजन है हमारा उसकी सिद्धि कैसे होगी तो वेद में मंत्र के द्वारा बताया।
यथा
जैसे स्वर्ग काम हो जाए, जब फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताया गया मोक्ष प्राप्त करना चाहिए तो वो वेद में बताया
जी।
अविद्या मृत्यु विद्या मृत्यु अमृत अविद्या को मृत्यु को हटा करके वेद मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए, रूप में ये वेद में उसका प्रतिपादन किया है।
वो भी हो गया, यजमान के जो कर्म हैं, हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं, अगर कल्पना कीजिए वेद का उपदेश ना होता, हम इस दुनिया में किस लिए हैं। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को नहीं जानते, हम क्या करने आए हैं, हमारे आपस में संबंध क्या है, कैसे जीना है, कैसे इस संसार ये चलेगा, इसकी राज व्यवस्था क्या होगी, धर्म व्यवस्था क्या होगी, हमें किसी को वैज्ञानिक कितने भी बड़ा उन्होंने बुद्धि का विकास कर लिया हो, इस विषय में उनका ज्ञान नहीं है आदि आदि। तो आज जो मुख्य विषय अभी अब चलेगा तो ये मंत्र आप देखें और अब ऋग्वेद संगीता निकाल लें, या थोड़ा सा बचा नहीं इसको कर देते हैं उपसर्ग तक लाने के लिए। तो इसमें अतो अन्य भाव विकारा एते सामे विकारा भवंतीति स्मः, अन्य जो क्रिया के जो विकार हैं वो इन्हीं के होते हैं। जैसे एक को ले लेते हैं फिर आप देख लेना, जैसे जायते है, जायते का अर्थ उत्पद्यते भी होता है आदि आदि, अस्थि भवति आदि ये सारे घट जाते हैं। तो इसमें ये विषय पूरा हो गया था। अब उपसर्ग उप वृद्ध्यर्थम सृज्यते इति उपसर्ग, या उप सर्जते इति उपसर्ग, जो किसी की वृद्धि के लिए जिसका सर्जन किया गया है, किसी अर्थ की वृद्धि करता है या कुछ अपने अर्थ को वो स्वतंत्र भी बताता है, कुछ अपनी बात खुद भी छोड़ता है और किसी के बात में वृद्धि करता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो ये उपसर्ग जो हैं लोक में इनके अर्थ आपको पता ही हैं, बहुत से व्याकरण में आ चुका है, किंतु यहाँ कुछ अर्थ लगभग वैसे भी हैं और कुछ अलग भी हैं। मंत्र में ये कैसे घटते हैं, वैसे व्याख्याकारों ने पूरे मंत्र नहीं दिए हुए हैं और महर्षि यास्क ने तो इनके मंत्र ही नहीं दिए, किंतु कुछ जितने हो सकता है संभव कर लेते हैं। तो ये इसमें दो मत है, महर्षि शाक्टायन का मत है कि जो उपसर्ग हैं वे अपने अर्थ को स्वतंत्र रूप से नहीं कहते हैं, अर्थात जैसे गच्छति है तो आगच्छति है, तो गच्छति के अंदर जो चीज थी गमन, वो उसने उसी का विकास किया है। कुछ का मत है कि इनके अपने स्वतंत्र अर्थ हैं, कुछ निपात को इसको उसर को द्योतक मानते हैं और कुछ प्रकाशक मानते हैं आदि आदि। तो इन्हीं के शब्दों में देख लेते हैं, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्तायन। निर्बद्धा निश्चयन, बद्धा न निर्... और जो निर्बद्ध नहीं है अर्थात स्वतंत्र, उपसर्गा अर्थान निराहु, अर्थ को वो निश्चित रूप से नहीं कहते हैं इति शाक्तायन। अर्थात नाम और आख्यात दो ही चीजें हैं जिनके साथ ये जुड़ते हैं, तो नाम और आख्यात से रहित उपसर्ग अपने अर्थ स्वतंत्र अर्थ को नहीं कहते हैं, अर्थात इन्हीं के अर्थों को प्रकाशित करते हैं, ये महर्षि शाक्तायन का मत है। और शाक्तायन जो है एक अच्छे वैयाकरण भी हुए हैं, आप जानते हैं महाभाष्य में आया है कि वैयाकरणा नाम शाक्तायन रथ मार्गासीन गच्छन्तम सार्थम नोपलेभे। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो कहते हैं कि सार्थ है रथेन सह वर्तते थे, सार्थ है जो बड़े बड़े रथ लेके व्यापारी लोग जाते थे, तो महर्षि शाक्तायन का आश्रम वही कहीं किनारे पे होगा मार्ग के, तो बैठे हुए थे तो किसी ने पूछा कि भाई कोई यहाँ से पथिक गए हैं क्या, तो इतने मग्न रहते थे विद्या में कि पता नहीं कि गए या नहीं गए, बल्कि धूल आदि भी उड़ी होगी, कितने रथ के समूह जाते, तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। कभी आप ऐसे सोचे कि भाई इनका मत ये है और दूसरे का ऐसा है, तो कोई सामान्य भी नहीं थे, बहुत अच्छे वैयाकरणा नाम श्रेष्ठ वैयाकरण माने जाते हैं। नाम आख्यात वस्तु कर्मोप संयोग द्योतका भवंती। नाम आख्यात वस्तु, नाम और आख्यात के तो कर्म, कर्म नाम अर्थस्य उपवृद्ध्यर्थम संयोगे सति द्योतका भवन्ति, तो उन्हीं के अर्थ को संयोग होने पर, उनके पास में रखने पर उसी के अर्थ को प्रकाशित करते हैं, बताते हैं। कर्मणा उपसंयोगे सति, अर्थस्य उपसंयोगे सति एव द्योतका भवन्ति, तो गच्छति आगच्छति इत्यादय। अब ये तो शाक्तायन का मत हुआ कि वो उन्हीं के अर्थों को बताते हैं, किंतु महर्षि गार्ग्य कहते हैं गर्गस्य युवपत्यम कि नहीं भाई, इनके अपने भी अर्थ हैं, अपने अर्थ इनके कैसे हैं ये आगे बता रहे हैं। उच्चावचः पदार्था भवन्तीति गार्ग्य, उच्च और अवच अर्थात बहु प्रकार का, ऊपर नीचे अर्थात बहु प्रकार का पदार्था, एतेषां पदस्य अर्था भवन्तीति गार्ग्य। गार्ग्य आचार्य कहते हैं कि इनके अनेक प्रकार के अपने अर्थ भी होते हैं। तद यह एषु पदार्थ प्रहो इमेतम, तद यह एषु, एषु उपसर्गेषु पदस्य अर्थ वर्तते प्राहु प्रकर्षेण आहु इमे तम, तम अर्थम, उस अर्थ को ये अच्छी प्रकार से कहते हैं जो इनका अपना अर्थ है। किस प्रकार से, नाम आख्यातयोः अर्थ विकरणम, नाम और आख्यात का जो अर्थस्य विकरणम विशेषम, जो अर्थ विशेष है वो ये ही कहते हैं, अर्थात इनका अपना अर्थ है। गच्छति का अर्थ गमन ही है, आगमन जो कहा जा रहा है वो इसी के द्वारा कहा जा रहा है, नहीं तो ये नहीं कहेंगे। शाक्तायन के मत में ये धातु और नाम और आख्यात को ही बता रहे हैं, उसी के अर्थ में विशेषता बता रहे हैं, और इनका अपना स्वतंत्र अर्थ भी है ये महर्षि गार्ग्य कह रहे हैं, अर्थात दोनों ही इनके अर्थ हैं, इनका अपना स्वतंत्र अर्थ भी है और धातु के अर्थ को भी प्रकाशित करते हैं। दो मत हो गए तो दोनों मतों का खंडन नहीं हुआ है, इससे ये खंडन नहीं हुआ कि उनका मत ठीक है इनका, कि दोनों को देखने का तरीका है, एक उस पदार्थ को इस रूप से देख रहा है, दर्शन भी देखने का तरीका है, एक 16 पदार्थों में तत्वों को देख रहा है, एक 6 में देख रहा है आदि आदि। तो ये दोनों ही अर्थ हैं और वैयाकरणों के मत में भी दोनों ही अर्थ हैं। अब सबसे पहला जो उपसर्ग है आ इति अर्वाग अर्थ है, ये अर्वाग अर्थ में है, इस ओर लौटाने अर्थ में है। तो इसमें ये यहाँ तक कार्य वैसे पूरा हो जाता है निरुक्त का, आ इति अर्वाग अर्थ है, तो कुछ भी उसमें घटा लीजिए, आगच्छति है, आगमनम है और आचार्य है, सुबंत में ऐसे घट जाएगा, आसमंता चिनोती अर्थमिति आचार्य। किंतु अब हम सोचते हैं मंत्र में भी कुछ घटा लें, तो ये मंत्र आप देखिए, सबके पास ऋग्वेद संहिता होगी, इसका पहले तो देवता देखिए, किसी भी मंत्र का अर्थ करने के लिए देवता यानी मंत्र का विषय वो गौण है या मुख्य है या संबंधी देवता है दूसरी बात, छंद तीसरी बात, क्योंकि अगर छंद से भी अर्थ होता है यानी गायत्री छंद है तो पृथ्वी की बात होगी, त्रिष्टुप छंद है तो अंतरिक्ष की बात होगी, जगती छंद है तो द्युलोक की बात होगी, ऐसे तीन चीजें आगे स्वयं बताएंगे। तो अब इस पे देखिए वायवा, ये वायो है वैसे संबोधन में, हाँ आ या ही आ, तो इसका ये उपसर्ग ये आ है, वैसे इसको अलग लिख देते तो उस लोगों को समझ में आता। दर्शत इमे सोमा अरंकृता तेसाम पाही श्रुधि हवम, तो वायु संबोधन में हे वायु, पहले सामान्य अर्थ कर लेते, महर्षि दयानंद जी का लाए हैं तो ये हिंदी वाला ही है, अभी तो संस्कृत वाला नहीं मिला, तो इसको एक व्यक्ति ले लें, इसको भी पढ़ देना। हे वायु आयाही आयाही आसमंतात अस्माकं पुरस्तात आयाही आगच्छ, और वायु का विशेषण क्या है, दर्शतः, हे दर्शतः वायु, दर्शनीय वायु। ये कैसे हमें पता लगे कि दर्शतः वायु का विशेषण है, क्योंकि दर्शतः में अपना कोई स्वर नहीं, ये पहचान है संबोधन की आपस में, कि पहले में तो जो पद के आदि में होगा उसमें तो आमंत्रितस्य च, कहाँ का सूत्र है, साष्टिक, ये आदि उदात करेगा, और आष्टमिक क्या करता है, आमंत्रितस्य आष्टमिक भी है, वो क्या करता है, सर्वनिगात करता है, जो पदादि में नहीं है, बीच में है ये, तो इसमें कोई अपना स्वर नहीं है, क्योंकि ये तो इमे का स्वर है, तभी ये अनुदत्तम पदम एक वर्जम हुआ है। तो हमने इससे कैसे जाना कि इस ये संबोधन ही है, तो हे दर्शतः वायो आया ही, हमारे पास हमारे पुरस्तात आइए, स्वर भी लगाएंगे पूरा, इमे सोमा अरंकृता, इमे पुरस्तात स्थापिता, सोमा अरंकृता, अलं क्रियते इति अलंकृत्ते अलंकृता, कुगति प्रादय समास हुआ है। तो क्या वार्ता हुई, पहली क्रिया क्या है आया ही, दूसरी क्रिया क्या है पाही, तीसरी क्रिया क्या है श्रुधि, अरंकृता क्रिया थोड़ी है, क्रिया नहीं हो, तो तीन क्रिया होगी, तो तीन क्रिया होगी अर्थात मंत्र तीन बातों को बता रहा है, तीन क्रिया का अर्थ है कि मंत्र तीन बातों को आपको बता रहा है। पहली वार्ता कि कोई हमारे पास आए, आने के बाद क्या करे वो, ये तो विशेषण होंगे सारे, कि उनको जिसके बारे में हमने बुलाया है उसको वो पिए या उसको रक्षा करे, दोनों बन जाते हैं पाई से, और जब वो पी लेगा तो फिर क्या करेगा, हमारी आह्वानम श्रृणु, कोई भी अतिथि या विद्वान हमारे घर आता है तो पहले अपनी उसको समस्या नहीं बताते हैं, पहले उसकी सेवा करते हैं और उसके बाद में अपनी, तो वो यह श्रुधु आह्वानम अस्माकम आह्वानम श्रुधि श्रृणु ही, हमारी वार्ता को अब सुनो, क्योंकि अब आप आए थे, हमने आपकी सेवा की, तो कुछ हमें भी सेवा दो। ये वार्ता हुई, मुख्य अर्थ बाद में करेंगे, अभी व्याकरण लगाते हैं। वायु कौन करेगा निर्वचन, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। हाँ वाति गच्छति और जानाति भी वायु, निर्वये तो हुई व्युत्पत्ति, धातु प्रत्यय बताइए, सूत्र बताइए। क्री वा पा जी मी उण तो प्रत्यय हुआ, ये हो गया तो वायु बन गई। तो ये जो वायु बना है तो ये अंतोदात होना चाहिए, प्रत्यस्वर रहेगा ना, प्रत्यय प्रश्चय आदि उदात्तश्चय प्रत्यस्वर रहेगा। किंतु ये संबोधन में आदि उदात्त कैसे होगा, अंतोदात होना चाहिए था, आदि उदात्त संबोधन में कैसे हुआ, आमंत्री तस्य च। क्या अर्थ है इसका, कहाँ का सूत्र है? हाँ, तो आमंत्रितस्य आद्युदात्तो भवति, तो ये आमंत्रित है, हे वायो, और फिर क्या हो गया यहाँ, ये वकार कहाँ से दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, अब आ को अलग कर दीजिए, हे वायो आ निपाता, ये उदात्त हो गया। और उदात्त के बाद तिंगं, क्या सूत्र है, तिंगं अतिंग, अतिंग से उत्तर तिंग क्या है, तो ये निघात हो गया इसे। और उसके बाद में क्या हो जाता है, स्वरित कैसे हुआ, स्वरित सीधी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो वायव आया ही, हे वायो अस्माकम पुरस्तात, अर्वांग अर्थे वर्तते, तो अस्माकम पुरस्तात आया ही, हमारे सामने पास में आप, या ही तो बनाने की अपेक्षा नहीं है तो भैया कर्ण बैठे हुए। हाँ ठीक है, दर्शता, दर्शता का कौन करेंगे, ये थोड़ा ये परोक्ष वृत्ति माना जाता है। हाँ बोलिए बोलिए, कौन कोई एक हाथ तो बोलिए। मैंने कहा था कल पाठ देख के आना, इस मंत्र दो दिन से लिखा हुआ है। दृशेर अतच कहाँ का है, तो क्या प्रत्यय हुआ, तो जब ये प्रत्यय आपने यहाँ किया तो स्वर लगाइए, हाँ, पश्यति येन स दृशतः, जिसके द्वारा देखता है, देखने का साधन या देखने वाला, दोनों इसके अर्थ माने जाते हैं। कर्म में भी कर सकते हैं, कर्ता में भी कर सकते हैं। और वायु का वाति गच्छति इति वायु विहार, जब उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति चलते हैं तो साधन भी बनता है। तो अब ये इसका विशेषण, चितांतोदात से अंतोदात हुआ, किंतु इसमें कोई स्वर नहीं है, क्यों नहीं है, तो विशेषण होने से क्या हुआ, विशेषण होने से क्या हुआ, भले ही एक दो मंत्रों पर हम पूरा सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, अगर ये समझ में आ गया तो आपको हजारों मंत्रों में स्वर लगाना आ जाएगा। विशेषण होने से क्या हुआ वो बताइए, भाई सीधा ही आमंत्रित हुआ, आमंत्रित होने से क्या हुआ, अष्टमिक क्या कहता है, जो पदादि में नहीं है, तो उसको सर्वनिघात हो गया, सर्वनिघात होने से क्या हुआ, कोई स्वर नहीं बचा बस। अब जब ये हो गया, इमे के साथ में इसका वो करो, और ये विसर्ग था दर्शत में, तो विसर्ग कहाँ गया, हाँ तो बोलो फिर कैसे हुआ, ये क्या है, एंग है या ह्रस्व है, हाँ तो फिर ह्रस्व होने से यहाँ उसका हो गया लोप। अब यहाँ क्या हो गया ये भी बताना पड़ेगा, कौन सा गुण हुआ, ये गुण हो गया, वो क्या था, फिर से अंतोदात्त, वो अंतोदात्त था, अंतोदात्त होने से क्या हुआ, इमे की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों का होगा, उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश क्या होता है, कौन सा सूत्र है, उदात्त और अनुदात्त दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, आठवें अध्याय में जाइए, अष्टाध्याय लेके आए हैं, तो अष्टाध्याय तो अब रखनी है, अभी तो रोज का कार्यक्रम है। एक आदेश है तो उदात्त और अनुदात्त का तो क्या होगा, किंतु ये दोनों ही अनुदात्त हो तो अनुदात्त ही रहेगा, वो हो गया। सोमा निर्वचन कीजिए, उनादि भी लेके आया करें। हाँ बोलिए, कहाँ क्या लगा, मन प्रत्यय कैसे हुआ, किससे हुआ? मन प्रत्यय बनाया हुआ है, सर धातु से मत करो, उनादि से हुआ है मन प्रत्यय, तभी तो आदि उदात हो गए ये नित्य देर नित्यम से। बोलिए, अर्तिस्तु दु श्रु श्रु मन, तो मन प्रत्यय हुआ। मन प्रत्यय होने से क्या हुआ, इसका अर्थ सूयते अभिसूयते यस सोम, जिसको निचोड़ा जाता है या जो ऊर्जा देने वाला है वो क्या है, सोम है। मन प्रत्यय क्या था, नित था, तो क्या हुआ स्वर आदि। कम से कम अष्टाध्यायी भी अभी अवसर है, तो निघंटु के साथ साथ स्वर सिद्धि वाले जो वो हैं वो तो पक्की होनी चाहिए, नहीं तो आगे समस्या आएंगी। तो सोमा अरंकृता, इमे सोमा किम कृता, अरंकृता, के अरंकृता सोमा, के निकृता अस्माभिः कृता। तो यहाँ तक कोई समस्या इसमें, ये नित्य देर नित्यम से आदि उदात हो गया, सूयते अभिसूयते सोम है। तो इसका मुख्य क्या चीज हुई कि वायु एक देवता है और उस देवता के लिए सोम को हमने अरंकृता है, अरंकृता नाम है अलंकृता, और इसका निर्वचन थोड़ा कई स्वर लगेंगे, इसको ध्यान से लिख लें या नहीं समझ में आए तो अरंकृता इसका बनाइए सिद्धि। इसमें स्वर के 5-6 सूत्र लगेंगे, इतनी जल्दी ये औरों की तरह एक एक सूत्र से काम नहीं चलेगा, इसमें अपवाद कहीं है। राम किशोर जी, अच्छे भैया कण माने जाते हो आप, तो थोड़ा लगाओ दिमाग। है भूषणेलम, ये सूत्र है, ये क्या कहता है? और जब ऐसा होगा, निपात संज्ञा होती है, गति संज्ञा होती है, दोनों ही होती है वैसे तो। अब इसमें क्या करेगा, अरम जो है अलम, दोनों का एक ही अर्थ, रलियो अभेद, तो दोनों का अलम क्रियते इति अलंकृते अलंकृता, तो ये हो गया, इससे इसकी गति संज्ञा होगी और कुगति प्रादय, इससे क्या हुआ समास हो गया। यहां तक कोई समस्या? सीधा ही जिसका समास हुआ है, किसी से पूछना नहीं, पहले सूत्र लगाओ समासस्य, जिसका भी आपने समास किया है पहला सूत्र लगेगा समासस्य। तो समासस्य किम भवति, अंतोदात्तु भवति, किंतु दिखाई क्या दे रहा है, इसका मतलब वो सूत्र यहां। अब दूसरा घटाओ, ये क्या है, वो तो बहुत बाद की चीजें, और भी चीजें घटेंगी इसमें। छठे अध्याय का द्वितीय पाद का द्वितीय सूत्र बोलो, तत्पुरुषे बोलो पूरा सूत्र एक बार धीरे से। ये क्या है, तो इसमें क्या करोगे आप, पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ, लगाओ क्या बनेगा, ठीक है वो लगा, तो क्या इतने से संतुष्टि हो गई, ये गति है, काम तो चल गया, ये भी हो गया, किंतु सूत्र और भी लगेंगे, वो कौन से लगेंगे, ये क्या है, गति संजक है, तो गति का सूत्र ढूंढो, वो वहां क्यों जा रहा है, उससे पहले और अपवाद है। हाँ तो क्या प्राप्त हुआ इससे, हाँ तो उत्तर पद का क्या प्राप्त हुआ, आदि उदात्त प्रकृति स्वर। तो अब यदि आपने ऐसा माना तो फिर गड़बड़ हुई, तो अब एक सूत्र और लगेगा गति, तो इससे क्या हो गया, तो किसका बचा, निपाता मई आगे। अब समझ में आ गए, नहीं आया तो और पूछो, और कल तो तैयारी करके लाने सुनाना भी है, ऐसा नहीं कि मैं ही मेहनत करूं और आप लोग अपना। तो यहाँ तक स्वर लगा, तो क्या स्वर की अपेक्षा है? हाँ, ऐसा लग रहा होगा भाई इतने सूत्र लगेंगे तो फिर तो अपेक्षा सी नहीं है ना, क्योंकि तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी। इसमें तो कमी लगे, कई जगह ऐसे आएंगे 15-15 सूत्र अपवाद ये वो ऐसे ऐसी चीजें आएंगी जो लंबे समास हो गए, किंतु महर्षि पाणिनि ने स्वर सिद्धि दी है ना। तो जब उन्होंने स्वर सिद्धि दी है तो हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ये कह के तो नहीं बचा जा सकता कि भाई स्वर की महत्ता नहीं, स्वर की बहुत बड़ी महत्ता है ना। अब स्वर की महत्ता कैसे है? क्षयो निवास है, कहाँ का सूत्र है? हाँ, क्षयम प्राप्नु ही, इसके दो अर्थ हैं। कौन कौन से? हाँ, और एक, और एक टीवी का रोगी, एक एक शपथ है और एक आशीर्वाद है। तो शपथ श्राप कैसे है कि भाई कोई दुष्ट काम किया कि तेरे को टीवी का रोग हो जा, है ना। तो एक तो ये हो गया क्षय का रोग हो जा, और दूसरा निवास घर को प्राप्त हो जाओ भाई, आपको घर वर मिल जाए, है ना। तो अंतर कितना हो गया? केवल आदि उदात और अंतोदात होने में। तो स्वर की बहुत महत्ता है, मेहनत करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, 3-4 महीने में ऐसे उंगलियों पे स्वर हो जाते हैं, और नहीं करेंगे तो आजीवन नहीं होंगे, जैसे अभी तक महाभाष्य तक पढ़ने के बाद भी नहीं हुए, जबकि ये काम काशी का तक हो जाना चाहिए था। अब तेसाम पाही श्रुदि हवम, तेसाम तेसाम के साम, इसको कैसे घटाएंगे? तेसाम के शाम, तेसाम नाम है तान पाही, कर्म में है। तो तेसाम पाही तान उपरोक्तान सोमान पाही, पाही नाम है पिबा, ये आदेश क्यों नहीं हुआ पा को पिब, भाई शप आया है होना चाहिए था, किस सूत्र से होगा? तो क्यों नहीं हुआ यहाँ? छंदसी मान करके क्या हुआ? हाँ जी, अच्छा
दूसरा तो
रक्षा करो या पियो, तो दोनों में तो अंतर होगा ना,
रक्षा ही
है। चलो तो इसको निघात कैसे होगा? पाही में स्वर क्यों नहीं हुआ? और ये फिसो अंतोदात तसे अंतोदात क्यों नहीं हुआ, या आदि उदात कैसे है तेसाम?
क्योंकि
इसमें
कैसे
तो तेसाम पाही श्रुधि हवम, श्रुधि कौन से लकार का, कौन सी धातु का रूप है, कौन से पुरुष का?
धातु
है। ये दीर्घ कैसे हो गया? हर चीज में छंदसी बहुलम छंदसी नहीं घटेगा, सूत्र भी हैं जो कुछ याद ना हो तो बहुलम छंदसी वा सर्वाह विद्या छंदसी भवंती, है ना, ऐसा नहीं कहने से चलेगा, सूत्र भी हैं इसके। अब देखिए आप लोगों को याद कैसे नहीं है, दीर्घ करने का एक ही प्रकरण पूरी अष्टाध्यायी में कहाँ है? ढह लोपे पूर्वस्य, आवर्ती करो प्रारंभ आ जाएगा फिर। तो दिमाग कैसे घटाना है कि महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं उनके लिए तो इतनी सुविधा दी हुई है, पूरे प्रकरण बंधे हुए हैं, कहाँ करना है? गुण वृद्धि के कुछ ही सूत्र हैं, वो दिमाग वहीं जाना चाहिए। दीर्घ का कहाँ है? अष्टाध्यायी अगर भूल भी जाओ तो दीर्घ याद दिला देगा, तो वो उसको छोड़ के कहीं है ही नहीं जो ऐसा दीर्घ किया हुआ। तो अन्य सामग्री दृश्य थे, और हवम ये कैसे बनेगा? जल्दी बनाए तो बनाया ना, तृतीय अध्याय में शब्द की सिद्धि है प्रथमवर्ती में। बोलो, तो रिदोरा बोलो ना भाई। और वैसे तो रिदोरप तो होगा ही, और भावे अनुपसर्ग से होना चाहिए, हाँ वही होगा, भाव में है ना ये अनुपसर्ग रही, उपसर्ग रहित भी है तो उसी से होगा यहाँ प्रत्यय। तो ये जब प्रत्यय हुआ, हाँ हवम तो आह्वानम भाव में ही है, हुयते इति हवम, आह्वानम हवम, ये कर्म में या कर्ता में नहीं है। तो हवम नाम है आह्वानम, हम जो आपको पुकार रहे हैं उसको क्या करो आप सुनो। तो अब बताइए, गौतम जी बताएंगे फटाफट कैसे हुआ, अर्थ बताइए बस, व्याकरण नहीं पूछ रहा, व्याकरण बाद में पूछूंगा, कैसे घटा है, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर ब्राह्मण में चलेंगे थोड़ा।
मेरे द्वारा ये श्लोक अलंकृत किया गया,
शब्दों को जोड़ के अन्वय करके हिंदी में तो बताओ, पर अन्वय तो कर लो आपस में। विशेषण पहले लगेगा या बाद में लगेगा,
फिर
हाँ ये कौन से सूत्र से पता लगा विशेषण पहले लगता है, ठीक है आगे चलो।
अस्माभि इमे सोमा तान पाही सुधि,
और हमारे आह्वान को सुनो। तो इसमें दो देवता हैं, अब हम देवता पे आते हैं, दो देवता हैं वायु और सोम। अब वायु कहाँ रहता है, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो हम वायु ना हमारे पास आएगा, पास से हो सकता है गुजर जाए और हमें पहचान ना हो। तो वायु क्या है, निरुपकार ने कहा तिस्रैव देवता, तीन ही देवता है, अग्नि पृथ्वी स्थान है, वायु व इंद्रो व अंतरिक्ष स्थान है, और सूर्य आदित्य द्युस्थान है, आदित्य जो है वो द्युलोक में रहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये वायु जो है ये अंतरिक्ष की बात यहाँ की जा रही है। और सोम कहाँ रहता है, क्योंकि सोम कहाँ रहता है तब नहीं जानेंगे, तो वायु का उसका तब भी हम संपर्क संबंध नहीं ढूंढ पाए, उनका तो संबंध नित्य है, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो स एस नक्षत्राणाम उपस्थे सोम आहिता, नक्षत्रों की गोद में सोम रहता है। और नक्षत्र कहाँ है, दूसरा सोम जो है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो आदित्य लोक है उसके इसमें, आज सोम लोक से आहुति जो सूर्य को जो निरंतर ऊर्जा मिल रही है उसका संबंध सोम से ही है, इसी का एक नाम आपय तत्व भी है। और इसका देवता मुख्य रूप से जो प्रकटीकरण जिसका देवता का है वो चंद्रमा, चंद्रमा वही सोम है। एक बार पुनः करता हूँ क्योंकि ये संबंध की बात है, जाननी जरूरी है। पहली वार्ता क्या है, वायु और सोम, वायु निरुक्तकार के अनुसार अंतरिक्ष में रहता है, और सोम जो है उसका नाम स्थूल जो उसका पदार्थ है, जैसे आग्नेय पदार्थ का स्थूल पदार्थ जो है वो सूर्य है जो दिखाई देता है, किंतु उसका सूक्ष्म परमाणु बहुत ज्यादा हैं, इसी प्रकार जो सोम का स्थूल रूप है जो हमारा जिससे सीधा संपर्क प्रतिदिन होता है वो चंद्रमा है, किंतु इसका जो मूल तत्व है वो सूर्य में निरंतर आहुति दे रहा है। सूर्य में निरंतर आहुति देने से ही, सोम की आहुति पढ़ने से ही यहाँ निरंतर प्रकाश आ रहा है, उसी का नाम आपय तत्व भी है। मंत्र है अपाम रसम उद्वयसम सूर्य संतम समाहितम अपाम रसस्य योरस तम वो गृणामी उत्तम, महर्षि दयानंद की व्याख्या भी है यजुर्वेद के संभावना की 9वें अध्याय का 22वां मंत्र कुछ होना चाहिए। तो अपाम रसम, सूर्य में क्या हो रहा है ये मंत्र उस बात को बता रहा है। अपाम रसम, अपाम रसम, रसम नाम है सारम, आप तत्व का एक सार है। सूर्य संतम समाहितम, सूर्य संतम समाहितम सम्यक्तया असमंता धृतम, सूर्य में वो भरा हुआ है। अपाम रसस्य यो रस, एक घटना होती है कि रस का रस बनता है, अर्थात सूर्य में जो घटना हो रही है वो जो रस भरा हुआ था वो जलता है, वो रस का फिर एक रस बनता है, तम वो गृणामि उत्तम, वही सूर्य रश्मि के रूप में यहाँ आ रहा है, उसी का नाम आप है, और एक भाषा में उसी का नाम सोम भी है। किंतु ऐसा होते हुए भी वायु से हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो थोड़ा तो कुछ पता लगा, वैसे तो ब्राह्मण में सारी चीजें समझ में आती हैं इस प्रकार की कि सोम एक पदार्थ है और सोम के लगभग 125 अर्थ ब्राह्मण ग्रंथों में है, सोम के, अग्नि के भी लगभग इतने ही हैं, वायु के इतने तो नहीं है पर पर्याप्त हैं, 70-80 होंगे। तो उसमें वो रस यहाँ आ रहा है, तो इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं? महर्षि दयानंद जी का भाष्य पहले देख लेते हैं, पढ़िए, क्योंकि परमात्मा भी एक सभी देवताओं का महाभाग्यात देवानाम एक एव आत्मा बहुधा स्तुयते, कुछ ऐसा निरुक्त में आगे आएगा कि परमात्मा आध्यात्मिक अर्थ जब इसका करें, किंतु यदि इसका आदि देविक यदि वैज्ञानिक अर्थ करेंगे तो कैसे घटेगा, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा का प्रयास करेंगे। बोलिए, हाँ पदार्थ पढ़िए, जोर से पढ़िए, नहीं तो किसी और को दे दीजिए।
दर्शता ज्ञान से देखने योग्य,
रुको अभी, दर्शता इसका देवता क्या माना महर्षि ने पहले वो बताइए, नहीं परमात्मा माना है क्या
पहला से तीसरा तक वायु,
चलो बोलो हम समझ जाएंगे, आप बोलो, हाँ बोलिए बोलिए, धीरे धीरे बोलिए।
दर्शता हे ज्ञान से देखने योग्य,
दर्शता हे ज्ञान से देखने योग्य, परमात्मा ही होंगे फिर तो जी।
वायु अनंत बलयुक्त सबके प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर,
रुको रुको यही रुको यही रुकिए, अब इन दो शब्दों का अर्थ क्या हुआ? महर्षि दयानंद ने क्या अर्थ किया दर्शत और वायु का, क्या अर्थ किया? ज्ञान से देखने योग्य अनंत बल गुण युक्त परमेश्वर। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वायु का अर्थ यहाँ क्या है, क्योंकि वाति गच्छति तो वैसे तो नहीं घटेगा, जानाति वो सारी चीजों को जानाति, जापयति वा पदार्थानां तत्वानीति, वायु जो जानता है और बताता भी है पदार्थों के तत्वों को, वो वायु, वायु नाम है परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कैसा है?
ज्ञान से देखने,
ये बात ध्यान देने की, परमात्मा बिना ज्ञान के, और ज्ञान किससे होता है भाई, परमात्मा ने अपना ज्ञान किस में दिया हुआ है, इसका मतलब वेद को पढ़ के ही ठीक से परमात्मा को जाना जा सकता है, शब्द रूप में तो हम सभी जानते हैं, अनुभव की बात है। और आगे चलिए,
आप हमारे हृदय में आया ही प्रकाशित हुई,
आप हमारे हृदय में प्रकाशित हुई, तीसरी बात क्या हुई कि हे अनंत गुण बल युक्त दर्शन के योग्य परमात्मा, आप हमारे हृदय में प्रकाशित होजिए, मतलब होइए। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, परमात्मा कभी प्रकाशित होगा तो कहाँ होगा, हृदय में होगा, इसका मतलब परमात्मा का भी प्रकाश यानी हमें अनुभव होगा, और वो कहाँ होगा, हृदय में होगा। आगे चलिए, ये तो जी आचार्य जी कुछ इस विषय में बताए, ये हृदय पूछ रहे हैं जी, किस हृदय की बात है वो तो मैं आचार्य जी
पहले तुम ये बताओ, हृदयांत किसे मानते
हैं, जो बीच में है
इनकी परिभाषा बोलो,
दोनों स्तरों के बीच कट गई,
तो ये तो कोई वस्तु परत होगा
ना जी,
दर्शनीय स्थान होगा वो जो भी है, मतलब इस स्थान पर
तो
और ऐसा है कि नहीं, ऐसी चीज ऐसे स्थान है कि नहीं, ऐसे स्थान है कि नहीं, अथर्वेद या अथर्व अष्टा
चक्रा
चक्रा
नल द्वारा
देवानां पूरय तस्यां
हिरण्य कोश
स्वर्गो जीविताव्यतः तस्मिन् हिरण्ये कोशे त्रयरे त्रि प्रतिष्ठिते यद् तद्यक्षं यद् आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो
विदो। तो इनकी संदेह तो फिर आचार्य जी, वो कि वो कहां माने उसको, वो तो
महान माने ऋषि कहते हैं यहाँ माने
जी,
उपनिषद कहता है यहाँ, दोनों में गड़बड़ कुछ नहीं
जी,
क्योंकि तंत्र जो है वो
यहाँ,
मशीनरी जो है ना वो तो ये है, और साक्षात्कार की स्थिति आपकी ये है, और जीव शरीर में वैसे कहीं भी रह सकता है, लेकिन जब आप ध्यान में जाओगे तो ध्यान के जो केंद्र बिंदु है वहां जाना पड़ेगा उसमें।
ठीक है जी,
अब आप बता दो सर, मैं भी समझ लू।
नहीं नहीं, आपने बताई दी, हमने समझ लिया आचार्य जी।
मेरा तो वैसे ही मोटा मोटा काम चलता
है। इसमें ये है कि ध्यान के केंद्र बिंदु है, जब ध्यान करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि जीवात्मा कहाँ पर है?
देखने वाला कौन है? इतर इतरं पश्यति, इतर इतरं शृणोति, इतर इतरं जीवति, इतर इतरं मनोति। यदा दृष्टारम अरे केन जानियात, ज्ञातारम अरे केन जानियात, जो स्वयं ज्ञाता है उसको कैसे जानोगे? जान सकते हो, जो स्वयं ही ज्ञाता है उसको कैसे जानोगे? द्वैतम, जहां तक जानना और जानने वाली वस्तु और जानने वाला होगा वहां तो आप जानने की बात कर सकते हो। जब वस्तु मिट गई फिर क्या
करोगे? ध्यान केंद्र जहां जहां पर
दो बातों को मिला, एक तो शुरू की स्थिति जब आप ढूंढने जा रहे हो और जब ढूंढते हुए आप खो गए तो तब आपको क्या याद रहेगा? एक बात समझ, जो अद्वैत की स्थिति है, अद्वैत की स्थिति कब आती है? जब द्वैत नष्ट होता है। द्वैत कब नष्ट होता है? जब दृष्टा और दृश्य अलग अलग अनुभव में आते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, जिस दिन मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं आपको देख रहा हूं, केवल दिख रहा है, बस क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, तब उस समय आप कैसे ढूंढोगे कौन देख रहा है क्या देख रहा है? उस समय वो स्थिति नहीं, आप अपने को देख ही नहीं सकेंगे क्योंकि आप देखना ही भूल चुके होंगे। दो बातों को कह रहे हो, एक जो बात आप चाहते हो कि मैं कौन हूं, कहां हूं, किसको देख रहा हूं, ये प्रारंभिक स्थिति है, और अंतिम स्थिति है कुछ भी नहीं पता, न देखने वाले का पता न दिखने वाले का पता।
ठीक है तो जी, तो जब आप अपने आप को देखोगे और वो सारी तो अनुभव में आ जाएंगी, बाकी जो बातें आपने कही थी वो स्पष्ट हो गई। तो
अच्छा जी, जैसे मंत्र से सीधा हृदय तो नहीं दिखता है
क्या?
मंत्र में हृदय तात्पर्य से निकल लेता है और
भाई आप जो वही है ना अल्पश्रुतात् विभेति वेद, महर्षि दयानंद जो भी अर्थ करते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो बहुत श्रुत थे, सर्वशास्त्रज्ञ थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने संबंध जोड़ के वो अर्थ किया, क्योंकि उसका प्रकाशन कहाँ होगा? अगर इसका अर्थ जब हम परमात्मा लेंगे तो उसका प्रकाशन कहाँ होगा? तो अनेक ग्रंथों का जो सार उनके दिमाग में था उससे लिखा हुआ। मंत्र तो इस बात को ऐसे नहीं कह रहा है, किंतु संबंध मेधा क्या है, याम मेधाम देवगण, वो संबंध जोड़ती है कि कैसे घटेगा चीजें। हाँ, तो उन्होंने घटाया हुआ, उसमें कोई समस्या नहीं। आगे चलिए।
कैसे आप हैं कि जिन्होंने इमे इन प्रत्यक्ष सोमाहा संसारी पदार्थों को अलंकृत अर्थात सुशोभित कर रखा?
तो आप ऐसे हैं जिन्होंने इन संसार के पदार्थों को सुशोभित कर रखा है। इससे क्या सिद्ध, ये भी सिद्ध हुआ कि भाई ईश्वर ने जब ये पदार्थ बनाए हैं तो सुशोभित करके व्यवस्थित बनाए हैं। ये दुर्घटनावशात, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बड़ा सूर्य नेबुला के पास से गुजरा और टकराए और ये एक्सीडेंटल केस है सारा, व्यवस्था है तो कोई व्यवस्थापक है, तो वही व्यवस्थापक ईश्वर है। तो सोमारंकृता नाम है, सोमाकार्त महर्षि ने क्या किया है, वो निर्वचन से भी निकलता है, सुयते अभिसुयते ऐसे सोम है, तो सबका अभिसवन हुआ, प्रकृति से महतत्व बना और उससे वो बना, उसका निचोड़ वो बना उसका, तो वो सांसारिक पदार्थों को व्यवस्थित किया है जी।
तेषां, आप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं
जी,
इससे उनकी पाही रक्षा भी कीजिए और हवम हमारी स्तुति को सुधी सुनिए।
हाँ तो ये बात आ गई कि आप इनकी रक्षा भी कीजिए, क्योंकि जो बनाता है उसका कर्तव्य है योग क्षेमम वहाम्य हम, वहाँ तो वैसे है वैसे, वो अर्थ पर यहाँ घटता है कि योग मतलब जो पदार्थ की जो उपलब्धि है और क्षेम जो उसकी रक्षा करनी है, तो जिसने बनाया आप इसको रक्षित भी कीजिए और हमारे आह्वान को सुनिए। तो क्या आह्वान किया हमने, रक्षा और रूपी आह्वान को सुनिए, वही तो बताइए क्या क्या कह रहे हैं। प्रार्थना किसी रूप में की हमने, तो या तो वह प्रार्थना तो वैसे घटी रही है पर कोई अलग से बात तो नहीं बताई ना, कि हमारे इस भाव को सुनिए आप, भावार्थ पढ़ दीजिए।
इस मंत्र में श्लेष अलंकार है,
श्लेष अलंकार रुकिए क्या होता है पता है, नहीं पता होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। श्लेष अलंकार क्या है कोई घटा के बताएंगे, कुछ तो अलंकार पढ़ेंगे, कई तो शास्त्री भी हैं जो साहित्य वाहित पढ़ते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, श्लेष अलंकार जो है जहाँ दो चीजें एक शब्द से में दो अर्थ चिपके हुए हैं जो आपस में, वो श्लेष अलंकार है। तो उसमें क्या घटता है, मैं एक लौकिक उदाहरण दे के बात समझ में आ जाएगी। तम दिनम दुर्दिनम मन्ये यत्र मित्र आगमोन, तम दिनम दुर्दिनम मन्ये, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है यत्र मित्र आगमन है, मैं उस दिन को दुर्दिन मानता हूँ जिस दिन मित्र ना आए। तो मित्र के दो अर्थ है, मित्र का अर्थ सूर्य भी है और मित्र का अर्थ मित्र भी है। तो वो दिन दुर्दिन है जिस दिन सूर्य नहीं निकलता, और वो भी दिन दुर्दिन है, मित्र नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई असुर मिलेगा, है ना। तो वो दुर्दिन है, तो यहाँ श्लेष से क्या चिपका हुआ है, दो चीजें निकलती है, मित्र से सूर्य और सुहृद, तो ये दो चीजें निकलती है। तो श्लेष अलंकार इस प्रकार का, वही तो बताएंगे अब क्या निकलेगा।
जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है
जी,
उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रशिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होते हैं।
अब दो अर्थ निकल गए, परमेश्वर भी निकल गया और भौतिक वायु भी निकल गई। तो भौतिक वायु का प्रयोजन क्या दिया, कि वायु ना हो, जिनका गला बंद हो जाता है या जो बोल नहीं पाते हैं उनका एक ही है कि उदान वायु जो है, जो कंठ में ही जिसका स्थान है और दिमाग तक सूचना लाने का, भूख लगाने का, प्यास लगाने का काम उदान वायु का है, और वो उदान वायु पे जो नियंत्रण कर लेता है तो कंठ कूप शुद्ध पिपासा, तो उसकी भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है और ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। तो दो अर्थ इसके हुए, एक तो भौतिक वायु जो व्यक्ति को व्यवहार करा रही है बुलवा रही है, और वायु चरक ऋषि के अनुसार जितने भी भूकंप आते हैं, समुद्र में तूफान आते हैं, जितनी भी तोड़फोड़ होती है ये वायु के कारण ही है। वायु कुपित हो गई है, जैसे व्यक्ति कुपित हो जाता है तो क्या करता है, तोड़फोड़ करता है। तो वायु कुपित कर दिया परमाणु बम का विस्फोट करके, बड़े बड़े कचरे डाल के, कंपनियां लगा लगा के, और अमेरिका में क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य हुआ है इसलिए तूफान भी सबसे ज्यादा वहीं आते हैं, क्योंकि वो वायु कुपित है, उसके कभी नाम भी, हर तूफान का एक उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं। और जापान के अंदर भी ये स्थिति है क्योंकि वहाँ भी बहुत वो रहा है। तो जहाँ की वायु कुपित होती है महर्षि चरक के अनुसार वहीं ये सारी समस्याएं अधिकतर तूफान तोड़ना, भूकंप और ये होते हैं जी। वैज्ञानिक क्या मानते हैं, अभी उनका ज्ञान अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें, उन्होंने पुरुषार्थ किया वो धन्यवाद, पर वो अभी प्रतिशत में भी नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत वर्ष चाहिए। जो वो तो अंतरिक्ष में वायु ही नहीं मानते, वायु का सूक्ष्म स्वरूप की जो बात है, देवता के मूल तत्व को बताया जाता है। अग्नि पृथ्वी स्थान है, तो ये जो हम हवन की अग्नि करते हैं ये करते हैं, ये उसका स्थूल रूप है, और सूक्ष्म रूप जो पृथ्वी की नाभि में है। अगर आप इस पृथ्वी को खोदते रहेंगे 2-4 किलोमीटर नीचे तो अग्नि भरी हुई है, भयंकर अग्नि भरी हुई है, क्योंकि वेद भी ऐसा कह रहा है, निरुक्त भी ऐसा कह रहा है, तो और दिखाई भी देता है कभी कभी, ये जो क्या होता है लावा निकलता है, तो अग्नि भरी हुई है। और सोना भी अग्नि का ही एक प्रकार से अंतिम तत्व है जो उससे बनता है, वो शतपथ ब्राह्मण ऐसा मानता है। और भविष्य में यदि कुछ ऐसा रहा, हम लोगों ने कुछ प्रयास किया या वैज्ञानिकों ने किया, तो भविष्य में ना तो परमाणु ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना कोयले की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी जो है अग्नि गर्भा है। अगर वहां से हम विद्युत बना लें तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या बचेगी, क्योंकि ऐसा शास्त्र मानता है। विद्युत कहाँ कहाँ से बनाई जाती है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का पहला सूक्त, उसमें सब कुछ वर्णन है कि यहाँ से जलों से, वृक्षों से, वनों से, और ये जो विद्युत कड़कती है बादलों से भी विद्युत, वो इसको ये संग्रहण कर लें तो पता नहीं कितनी ऊर्जा हो सकती है। इनका विज्ञान अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा, पर इनका पुरुषार्थ को धन्यवाद हम कहते रहे, इन्होंने बहुत सी चीज़ें कर ली। किंतु ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिक दृष्टि से हम किसी को अपनी बातें नहीं समझा सकते। पूर्ण रूप से दिमाग में कितना भी बड़ा वैज्ञानिक आ जाओ, हम अग्नि क्या है, सूर्य क्या है, उसमें क्या हो रहा है, वायु क्या है, हम अपनी भाषा में उनके दिमाग को संतुष्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमारी दृष्टि में सूर्य में ये हो रहा है, जैसे मैंने मंत्र दिया। अब आप उसको अपनी भाषा में जो कहें, हम उसको आपकी भाषा में नहीं बताने वाले, हमारी ये भाषा है, ये घटना हो रही है नहीं हो रही है तो आप बताइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वैज्ञानिक कहते हैं वही सत्य है, इनका बदलता रहता है। पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा करें और सत्य के गहराई भी हैं, जैसे ही बदलता है आगे अपना भी बदल लेते हैं कि भाई ये था। अब वैज्ञानिकों में देखिए आप, एक वैज्ञानिक पहले मानते थे कि वो ब्लैक होल वाली चर्चाएं चल रही थी, अब दूसरे वैज्ञानिकों ने लगभग उसका खंडित हो चुका है। तो वर्षों तक उसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई, साहित्य लिखा गया, प्रचार किया गया, पढ़ाया गया, और अंत में क्या हुआ, मैं वो कह रहा हूँ ना। तो वर्षों तक जो साहित्य लिखा गया था, वर्षों तक जो पढ़ाया गया था, वो मिथ्या हो गया, क्योंकि वो वस्तु तो थी नहीं। तो इसलिए इनकी बात को हम पूरा ध्यान दें, हमारा नित्य है, क्योंकि नीरजस्तमा ऋषि है, जो ऋषियों ने शास्त्र लिखे हैं वो नीरजस्तमा है, समाधि में लिखे गए हैं, जिसके अंदर सत्य होता है वो सत्य के सिवा कुछ लिखता ही नहीं। और परमात्मा ने जो जान दिया है ये क्यों सत्य है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, ये किसी मनुष्य का तो बनाया है नहीं। इसलिए हम तो अपनी बात को रखने में समर्थ है, इनकी बात जो मानने लगा के मानते हैं, बाकी हम ऐसा कहें कि वो ऐसा मानते तो ऐसा है, तो जो अनुकूल होता है वो ठीक है। चरक का प्रमाण है, चरक ऋषि का प्रमाण है हमारे पास कि वायु को, वायु कुपित के कारण, 13वां अध्याय देख लेना, 13वां अध्याय और सूत्र स्थान जहाँ तक मेरे को याद है उसका है। क्यों आचार्य जी ऐसे ही है ना,
दरअसल क्या है, इतनी दूर भी जाने की जरूरत नहीं, क्रिया किसका परिणाम उधर जाओ
देखो, इसलिए अनुभवी आचार्य साथ में बैठे होने तो बातें खुल जाती नहीं नहीं पूछा करो, आचार्य इसलिए बैठे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ अब ये बात भी आ गई बिल्कुल सुस्पष्ट है कि भाई जहाँ क्रिया हो रही है वहाँ वायु और आग्नेय दो तत्व तो होते ही, किंतु जब ऋषि ऐसा कहते हैं तो अब यदि मतभेद आ रहा है ऋषियों की और वैज्ञानिकों की बातों में तो किसकी माने। सीधी बात है, हम तो भाई यत शब्द महा तद अस्माकम प्रमाण शब्द से आ
मैं पता है क्या करता हूँ
जी,
मैं अपना तरीका है सोचने का
जी,
मतलब वो सही है या गलत है उसका झगड़ा
नहीं जी।
हमारे शास्त्र जो सोचते हैं वो अर्थ से चलते
जी
और विज्ञान इसी से चलता है
जी।
विज्ञान की यात्रा जो सामने है उससे पीछे की ओर जाती है
जी,
और हमारी यात्रा बीज से
उधर
की ओर आती है
जी जी।
तो इसमें तुलना नहीं हो सकती, सही गलत नहीं हो सकता
जी जी।
और ये भी सही है क्योंकि इन्होंने सामने देखा हवा चलती है, तब इन्होंने हवा को पढ़ा
जी जी।
हमारे यहाँ सतोगुण रजोगुण से पढ़ रहे हैं
जी जी जी।
तो इसलिए इन दोनों को जैसे आप तुलना करते हैं ना वैसे तुलना बनती नहीं है
जी,
क्योंकि दोनों एक जैसे होते एक तरह से चल रहे होते तो ये बात हो
जी जी।
अच्छा दूसरी बात, हमारी क्योंकि शुरू से चली है और अंत तक पहुंची है
जी,
वो पूरी है
जी,
और ये अंत से चले हैं लेकिन शुरू तक
नहीं
पहुंचे नहीं,
पहुंचे नहीं,
इसलिए इनकी यात्रा अधूरी है
जी जी। ऐसा कह सकते हैं कि ये हम केंद्र से चले हैं धुरी तक पहुंचे, ये धुरी पे ही घूम रहे हैं,
मतलब ये बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं
जी जी,
अंदर से बाहर की ओर निकले और हम निकल चुके हैं और ये
अभी प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं,
ये अंतर है।
ठीक है जी, तो ये मार्ग में हैं और हम मार्ग से बाहर आ चुके हैं। ठीक बात, तो ये बात स्पष्ट यहाँ हुई। कितना समय हो गया? हाँ, तो आपने देखा महर्षि दयानंद ने जो अर्थ किया, इसमें दो अर्थ हुए, एक तो भौतिक वायु, दूसरा परमेश्वर। परमेश्वर से क्या प्रार्थना की भाई? अभी इतनी जल्दी भूलेंगे तो काम कैसे चलेगा? अभी तो अर्थ इन्होंने बोला, मैंने भी तो वही सुना है। क्या अर्थ किया है?
आप हमारे हृदय में प्रकाशित होती है, ये सांसारिक पदार्थ आपने रंग किया है,
सुशोभित शब्द लिखा हुआ,
आप इनके रक्षक हैं, तन की रक्षा कीजिए,
हमारी आह्वान सुनिए। तो हमारी आह्वान क्या है, ये बात तो एक तो उसमें आई है थोड़ी भावार्थ में। तो हमारी आह्वान क्या है? यही है फिर सीधा, कि आपने ये जो है सांसारिक जो पदार्थ है, अनंत गुण बल युक्त परमेश्वर, आपने जो दर्शन के योग्य हैं आप, और आपने जो सांसारिक पदार्थ सुशोभित किए हैं, आप इन्हें इनका निर्माण किया है, आप इनकी रक्षा कीजिए। हमारे इस आह्वान को सुनिए कि आप इनकी रक्षा भी करें, या हमें इतना समर्थ बनाए कि हम इनकी रक्षा कर सकें। तो मंत्र से हमें किस चीज का ज्ञान हुआ, अब ये चर्चा है। अभी फिर हम एक अर्थ और भी करेंगे। ये क्या प्रकाश कर रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं? तो यही आह्वान है कि आपने सारी चीजें बनाई हैं, ये सारी चीजें बनाई है ना, तो आप हमारी इस आह्वान को सुने कि इनकी आप रक्षा भी करें, केवल बना के ना छोड़े। कोई व्यक्ति किसी संस्था को बना के छोड़ देता है, रक्षा नहीं करता, तो क्या होता है? आर्य समाज की हजारों संस्था देख ले, आप अपनी प्रार्थना कर रहे हैं ना। आप किसी से कोई चीज चाहते हैं तो पहले प्रार्थना करेंगे या वैसी मिल जाएगी?
तो
आपका शरीर इस संसार में आता है नहीं आता? आपका मन संसार में आता है नहीं आता? तो आप उसकी रक्षा की प्रार्थना करेंगे नहीं करेंगे? तो ये आपके ऊपर घटेगा। जो वैज्ञानिक है, वो संसार के जो सभी पदार्थों को जानने वाला योगी है, ऋषि है, उसका रूप में तो इतना तो आपके लिए घटेगा। और आप चाहते नहीं है कि वैदिक धर्म सारे संसार में फैल जाए, तभी संसार की रक्षा होगी, ऐसा तो मानते हैं ना, क्योंकि यही तत्व ज्ञान है, यही शांति है, यही नित्य ज्ञान है, सब कुछ यही है, यही मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, कहीं है ही नहीं भाई। दूसरे जो ग्रंथ हैं उसमें कुछ चीजें तो हो सकती हैं, किंतु सार सभी प्रकार का विज्ञान क्या कुरान में है, क्या बाइबिल में है? नहीं। तो यहाँ सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। तो जितना आपके ऊपर घटेगा आप अपना अपने ऊपर घटाइए। तो इससे ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होता रहा है, ऋषियों ने करते रहे, हम भी वैसा करें। प्रार्थना का एक ही तात्पर्य होता है, जीवे में श्रद्धा सतम। इसका क्या अर्थ है? मंत्र पढ़ के छोड़ दें वैसा प्रयास भी करें तो 100 साल जीने का तो उपाय। आचार्य जी ने अच्छा व्याख्यान दिया था जब हम पहली बार आए थे, कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत हाँ, तो सुबह उठ के जो है ब्रह्म मुहूर्त में तो उठो और धर्म और अर्थ का चिंतन करो, और काय मूलांच तत्क्लेश चत्तल मूलान, काय के जो क्लेश हैं और उनका जो मूल है उस पर भी चिंतन करो। तो अब वो यदि शरीर में रोग है, मन में रोग है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सत्व बड़ा होता है, तो उसको जल्दी दूर किया जा सकता है, और देर तक सोते रहेंगे तो रजस तमस और बढ़ेंगे, तो 100 साल कैसे जिएंगे फिर? तो प्रार्थना का एक ही अर्थ है, जीवे में श्रद्धा सतम, संध्या में करते आपको वैसा पुरुषार्थ भी। केवल परमात्मा ने तो बना दिया, रक्षा तो आपको भी करनी है। तो इसका अर्थ यह है कि आपको ऐसा करना भी है प्रार्थना के साथ साथ। और प्रार्थना कब की जाती है महर्षि के अनुसार? तो वो भी करते रहें तभी रक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये बात हुई। अब इसका थोड़ा आधी देवी समय बचा है कि हाँ है, आधी देवी अर्थ भी थोड़ा देख लेते हैं, वैज्ञानिक अर्थ। महर्षि ने बता भी दिया वैसे कि वायु जो है भौतिक अर्थ में हमारे सारे कार्यों को करा रहा है, उच्चारण आदि। तो ये सोम और वायु ये क्या है? ये तो निरुक्त का कार्य है, यहाँ तक लगभग, अभी लगभग तो नहीं है क्योंकि देवतकांड आपने पढ़ा ही नहीं, वहाँ और भी अर्थ खुलेंगे, अर्थ भी इसका किया हुआ है। किंतु शतपथ ब्राह्मण में यदि इसको थोड़ा जाए तो सोम क्या है? ये तो निर्वचन हो गया, निरुक्त में थोड़ा और देवतकांड में जाएंगे और खुल जाएगा, किंतु मूल तत्व यदि इसका खोलना है तो कि ये क्या है, है? आप वही सोम है तो मैंने बता ही दिया था, और क्या अर्थ है इसका? इसमें है सोम क्या है? प्राणो वही सोमा, प्राण क्या है? सोम है। वस्तुतः वैदिक विज्ञान के अनुसार दो चीजें हैं, अग्नि सोमात्मकम जगत, पांच है वैसे तो, पर मुख्य जो चीजें हैं अग्नि और सोम, ये दो प्रकार के परमाणु हैं। आहार की दृष्टि से ये दोनों प्रकार के परमाणु व्रीहि और यव में, व्रीहि यवश्च भेषजौ दिवसपुत्रौ अमर्त्यौ, सूर्य स्थूल दृष्टि में ये सूर्य और चंद्रमा है, और शारीरिक दृष्टि से ये प्राण और अपान है, यवे है प्राण आहित अपानो व्रीहि उच्यते, ये अथर्वेद का मंत्र है कि दो ही शक्ति है, अगर आपकी प्राण और अपान शक्ति ठीक है तो सारी शक्तियां ठीक रहेंगी, तो आप जो और यदि व्रीहि ये इसकी दृष्टि से हो गए, प्राण अपान शारीरिक दृष्टि से हो गए, आदि दैविक दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा हो गए, चंद्रमा में अपान शक्ति है, सूर्य में प्राण शक्ति है। तो सोम क्या है? प्राण है, सोमो वही प्राण है, और चंद्रमा से भी इसका संबंध है। ये सोम किस औषधि में है, मतलब हमें कैसे मिलता है? सबसे ज्यादा गाय के दूध में है, अगर भौतिक दृष्टि से इसका देखें तो पय वही सोम, ये भी वचन शतपथ ब्राह्मण में है। सोम जो है वो दूध ही है, वो दूध कैसे आता है? चंद्रमा की रश्मियां जब औषधियों पे पड़ती हैं तो वो औषधि में सोम में रस में परिवर्तित हो जाती है, और जो सबसे अधिक जिस पे पड़ती हैं या जिसके अंदर सबसे अधिक संग्रहण की शक्ति है उसका नाम है सोम औषधि। सुश्रुत के अनुसार उसकी एक लंबी प्रक्रिया, 8-10 श्लोक हैं कि उसमें ये एक पत्ता आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मुंजवान पर्वत पे वो पैदा होने वाला है और उसका पूर्णिमा से उसका संबंध है, एक एक पत्ता बढ़ता है फिर एक एक गिरता है और उसके पीने से जरा अवस्था वृद्ध अवस्था समाप्त हो जाती हैं, ऐसा ऐसा वर्णन है। उसमें ये भी वर्णन है कि जब उसको पीते हैं तो एक द्रोणी में लेटा देता है वैद्य, उसको चिकना करके पलाश की एक नाव बना लेता है, उसमें उसको बंद कर देता है, पीते ही वो बेहोश हो जाता है, फिर पहले सप्ताह शरीर से कीड़े निकलते हैं, त्वचा गिर जाती है, दांत गिर जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, बिल्कुल खाल मांस मांस दिखाई देता है, फिर ऐसा चलता है, फिर उसको कोई औषधि विशेष तेल आदि लगाते रहता है, ऐसे होते 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 40 दिन में वो नवयुवक बन जाता है, 16 से 25 के आसपास का नवयुवक की वो है। तो ये उसमें सोम इस रूप में पृथ्वी पे है, द्युलोक में आपे तत्व के रूप में, और औषधियों में ये बताया है, और जो खाने की चीजें हैं उनमें ये व्रीहि के और दूध के अंदर है, बाकी सामान्य मात्रा सभी में, अधिक मात्रा इसकी उसमें है। और देवताओं की ये हवि है, आधि दैविक दृष्टि से यानी वैज्ञानिक दृष्टि से देवता किससे जिंदा है? देवताओं में जो प्रकाश है, जो उनके ऊर्जा है, वो किसके कारण है? तो सोमो वही हवि देवानाम, देवताओं की ये हवि है, देवानाम अन्नम सोम है, देवताओं का अन्न जो है सोम है। अन्न की भी एक कथा है, वो नहीं शतपथ ब्राह्मण की है कि अन्न क्या है, कैसे पांच प्रकार की प्रजा हुई, उसने कैसे अन्न मांगा प्रजापति से, फिर क्या कहा प्रजापति ने, आदि आदि। और तो ये कुछ बातें आपके सामने सोम के रूप में रखी है। ये सोम जो है, सोमो राजा चंद्रमा, स्थूल रूप में चंद्रमा में, इसका पांच प्राण है, ऋषि प्राण शतपथ के अनुसार, देव प्राण, पितृ प्राण, गंधर्व प्राण और असुर प्राण, ये पांच प्राण हैं। जब व्यक्ति में क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि पैदा होते हैं तो समझो कि असुर प्राण बढ़ गया है और इन्होंने इस चार प्राण को दबा लिया है। जब उसको धर्म प्रीति शास्त्रों के प्रति रुचि ध्यान में रुचि तो समझो कि ऋषि प्राण ठीक से काम कर रहा है। इसलिए ऐसे ही जब देवता प्राण जब उसको समाधि की इच्छा हो कुछ विशेष कार्यों की इच्छा हो आदि आदि तो वो देव प्राण काम करेगा। जब संतान उत्पत्ति की या गृहस्थ में जाने की इच्छा होती है तो तब पितृप्राण काम करता है, और जब नाचने गाने की व्यक्ति की संगीत की इच्छा होती है तो तब गंधर्व प्राण उसका जागृत है, ये जानना चाहिए। और लड़ाई झगड़े और इनकी तो असुर प्राण जागृत है, ये जानना चाहिए। तो इन पांच प्राणों में एक पितृ प्राण है जो मैंने अभी बताया, तो उसका संबंध भी जो है वो चंद्रमा से है ना। तो पितृदेवत्य वही सोम है, पितृदेवता वाला भी सोम है, क्योंकि अगर शरीर में आप तत्व ना हो तो शुक्र का विकास ही नहीं हो सकता और फिर आगे संतान उत्पन्न भी नहीं हो सकती आदि आदि। तो और वायु क्या है, ये तो सोम की चर्चा हुई। वायु का अर्थ परमात्मा किया, वायु का अर्थ भौतिक किया। ये जो वायु है ये ही पांच प्राणों में विभक्त भी है, जो इसका स्थूल रूप है ये इसमें प्राण अपान समान व्यान उदान आदि इस रूप में विभक्त है। ये वायु रहता कहाँ है शरीर में, सोम। और अब हम थोड़ा शरीर पे आ जाते हैं, तो ये जो यहाँ है इसका केंद्र है चंद्रमा, मनसो जाता चक्षो सूर्य आ जाता। तो जो स्रोत्र में वायु देवता का संबंध है, सोम का संबंध कहाँ है, सोम का जो संबंध है ये माना जाता है कि मस्तिष्को वही सोमा, जो दिमाग के अंदर ओज है, ओज मतलब एक ऐसा तरल पदार्थ है जो पूरे दिमाग को शरीर को ऊर्जा दे रहा है, वो सोम के रूप में वहाँ है। अब इसके अर्थ पे आ जाते हैं, यहाँ तक बातें खुली। अब वायु का सोम का संबंध क्या है, ये कैसे अलंकृत है और कैसे ये उसको पिएगा वायु और कैसे हमारे आह्वान को रक्षा करेगा वो, अब यहाँ तक कुछ बातें तो खुली होगी ना, वैसे गहन विषय क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के विषय चल रहा है। इतना ही आपको दिखाना मात्र है कि निरुक्त से क्या मिलेगा और शतपथ आदि पढ़ेंगे तो इसके अर्थ में आप कहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे इसके तत्व को खोल सकते हैं। बात समझ में आई कि सोम कहाँ रहता है, ये भी समझ में आई कि वायु कहाँ है, क्या कर रहा है शरीर में, पांच प्रकार से कैसे फैला हुआ है, किन पदार्थ में, ये भी। अब इसमें आ जाइए, अब थोड़ा इस अर्थ में आ जाते हैं। वायव आयाहि दर्शत इमे सोमा अरंकृता तेसाम पाहि सुरदेवम। अब वायु को घटाइए कि वायु क्या है, अब इसमें आध्यात्मिक अर्थ को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, जो सामान्य अर्थ था औषधि वाला वो भी हटा दीजिए, अब इसमें केवल वैज्ञानिक अर्थ में आइए, कहना क्या चाह रहे हैं, इससे हमें मिलेगा क्या। तो हे वायु आया है, वायु आओ, दर्शनीय वायु है, जिसको दर्शनीय का अर्थ ये नहीं है कि वो दिखाई देती है, मतलब उसको अपनी चीजों की जानकारी है कि मुझे क्या करना है, ये वैसे नहीं है जैसे चेतनता वाली बात हो, किंतु प्राण का भी पता है। अब यहाँ रास्ते में नस में प्राण चल रहा है, प्राण चल रहा है, रक्त में कुछ रुकावट आई तो प्राण रुक गया तो हाथ लटक गया, तो ऐसा वायु के जो केंद्र हैं उनको इन्हीं के माध्यम से अब यहाँ कुछ किया, ये सूचना कैसे पहुंची दिमाग तक, ये इन्हीं संवेदनों के कारण जाती है, वायु प्राणी इसको ढोके ले जाता है। तो वायव आया ही दर्शत है, हे दर्शनीय अपने कार्यों को ठीक से जानने वाले वायु आया ही, भौतिक वायु की बात चली जो शरीर में, इन्हें सोमा अरंकृता, दिमाग के अंदर जो मस्तिष्क वही सोम है वहाँ जो ओज है, ओज वैसे आयुर्वेद के अनुसार अष्ट बिंदु परिमित तो माता से आता है और एक अंजलि परिमित शरीर में होता है, किंतु वही पूरे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, ओज में कमी आने से रोग असाध्य अवस्था में चला जाता है, कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता। तो वायव आया ही दर्शत में सोमा, जो दिमाग में जो सोम है जो भरा हुआ है वो अलंकृत है, वो सुशोभित है, वो हमारे लिए अलंकृत है, उसको सुशोभित किया हुआ है, रखा हुआ है, परमेश्वर की एक व्यवस्था है। तेसाम पाई, वहां से जाके आप क्या करो, या तो उसकी रक्षा करो, क्योंकि वो ओज की उस मस्तिष्क में जो फ्लूड भरा हुआ है उसकी रक्षा होगी तो क्या होगा, सारा कार्य ठीक से चलेगा, क्योंकि प्राण को ऊर्जा मिलेगी, सारे काम ठीक से होंगे। तो तेसाम पाही और श्रुद्धि हवम, इदम अस्माकम आह्वानम श्रुति, हमारे इस आह्वान को सुनो या उसको पान करने के बाद जो हमारी प्रार्थना है, कि जो भी आपकी प्रार्थना है, प्रार्थना है कि आपको ऋषि बनना है, विद्वान बनना है, तो आपके उसी प्राण को वो जागृत करेगा, क्योंकि मन इस विषय को नहीं समझता कि आप प्रार्थना झूठी कर रहे हैं सच्ची कर रहे हैं। मन तो जुड़ जाता है, उदाहरण दिया था यहाँ टीवी चल रहा है, टीवी में मन इस बात को नहीं मानता कि ये टीवी पे नाटक चल रहा है, आप रोते भी हैं और आप हंसते, बुद्धि को निश्चय नहीं करने देता उस काल के लिए, तो नहीं तो आप हंसेंगे रोएंगे कैसे। आप उस क्रिया को अपने अंदर घटित मानते हैं कि ये क्रिया आपके अंदर ही हो रही है, तभी तो आप हंसते हैं रोते हैं, सब हम सब का यही हाल है। तो ऐसे ही जब आप प्रार्थना करेंगे और इन चीज़ों को, प्रार्थना का ये सबसे बड़ा लाभ है कि मन वैसी ही शक्ति शरीर में पैदा कर देता है, जैसी ऊर्जा चाहिए हमें उस क्रिया को सिद्ध करने के लिए, तो मन वैसी ही ऊर्जा आपको घेर घार के लाएगा और वो कराएगा। तो इसीलिए अस्माकम आह्वानम श्रुति, हमारे जो भी आपकी प्रार्थना है उसको आप हमारी प्रार्थना को सुने, ये भी एक अर्थ हो सकता है। ऐसा है मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, शतपथ आदि ब्राह्मण के अनुसार जो घट सकता था, जो मेधा का थोड़ा बहुत प्रयोग हो सकता था, ये भी एक घट सकता है। इससे क्या लाभ होगा, एक तो आपको ये जानकारी हुई कि एक ऐसा पदार्थ है जो वायु देवता जिसकी रक्षा करता है या उसका पान करता है, प्राण जो है ऊर्जा कहाँ से ले रहे हैं, तो वहां उनको पियो और हमारे आह्वान को सुनो, मतलब आपको ऊर्जा ठीक मिलती रहेगी। जिसके दिमाग में ऊर्जा कम होती है तनाव उसी को होता है, टेंशन उसी को होती है, जिसके दिमाग में ऊर्जा ठीक से नहीं पहुंच रही या दूषित ऊर्जा पहुंच रही, यानी असुर प्राण ठीक से चल रहा है, दूसरे प्राण काम नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा, जब आप आह्वान करेंगे, आपको पता लग गया सारा काम ठीक चल रहा है, तो आह्वान जब आप करेंगे तो वो जो प्रार्थना होगी मन वैसी ही शक्तियों को, वैसे ही प्राण को जगाएगा जो आपके उस क्रिया को सिद्ध करने में सहायक होंगे। इसलिए संकल्प की बड़ी महत्ता है, कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति संकल्प करे। संकल्प क्या करता है, सम एकी भूय कल्पम सामर्थ्यम उत्पादयति इति संकल्प है, जो आपको हजार विषयों से हटा करके एक विषय में लगा के आपके अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न कर देता। करता कैसे, ये मन ही कराता है, क्योंकि जब आपने संकल्प लिया ये काम कर रहा है, आपने संकल्प किया कि भाई मुझे सुबह उठ के व्यायाम करना है, सेहत बनानी है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि व्यायाम करना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा, जब आप नियमित व्यायाम करेंगे तो मन भी आपको उसी समय क्रिया में, हमारे अंदर एक जैविक घड़ी होती है जो निरंतर आपको, आप मन में कभी देख लें उसका प्रयोग करके, सुबह 4 बजे उठना, घंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, तो वैसे कोई उठा देगा। तो ऐसे ही समय पे यदि सारे कार्य करते हैं, एक विशिष्ट दिनचर्या में रहते हैं, एक विशिष्ट व्यवस्था में बंधे रहते हैं, तो हमारे सारे कार्य ठीक से होते हैं। कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी 6 बजे उठे कभी 4 बजे उठे, तो सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है और वो हानि का कारण बनता है। तो ये कुछ बातें रखिए। अभी इसमें एक बात और बची है, वैसे कल कर लेंगे उसको, ये तो इसका हुआ कि ये जो सोम और वायु का क्या संबंध है, शतपद आदि ब्राह्मण के अनुसार जो ये सोम है और ये वायु है, ये सोम को कैसे प्रसारित करती है ये वायु। सोम एक पदार्थ है, वायु भी एक पदार्थ है, और वायु क्या है, वाहक है, ये चीजों को ढो के ले जाता है। सोम को एक कैसे सूर्य में क्या करती है, कैसे होता है, इसकी चर्चा हम कल कर लेंगे। तो ओम शांति। तो आचार्य जी कुछ कहेंगे, समय है 10 मिनट, कुछ अच्छा रहेगा,
मैं क्या जा?
कुछ आशीर्वाद वचन निरुक्त के विषय में ही, कुछ मंत्रों के विषय में, जो है जो पाठ चल रहा है उसमें ज्यादा रुचि होती है लोगों की सुनने में। ये लो आचार्य जी को लगा दीजिए, ना थोड़ा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अच्छा, लो चंद्रगुप्त जी यहीं आ जाइए।
आज तो आनंद आ गया। आ गया कि नहीं? क्योंकि हमारे ऋषियों ने इतने शास्त्र बनाए और हम अलग अलग पढ़ते हैं। व्याकरण पढ़ने वाला व्याकरण पढ़ के छोड़ देता है, एक निरुक्त पढ़ता है वो निरुक्त पढ़ के छोड़ देता है, शतपथ ब्राह्मण भी कोई पढ़ लेता होगा, लेकिन इन सब में आपस में क्या संबंध है? तो आपस में जो संबंध है वो कौन बता सकता है जिसने सब पढ़े हों? तो निरुक्त भी पढ़ा हो, व्याकरण भी पढ़ा हो, तब ये बात समझ में आती है। मतलब वैसे तो निरुक्त ने कह दिया, और निरुक्त ने जो एक बात कही ना, तदिदम विद्यास्थानम, तो जो सोच है, ऊहा है, तर्क है, उसको निरुक्त पैदा करता है। और यहां जब कोई बात हमारे सामने कही, जैसे आपने एक बात पूछी कि दर्शता जो झगड़ा है, तो एक वेद के बारे में एक सीधा सा सिद्धांत है कि काल और ये पुरुष और वचन, इनके सब व्यत्यय होंगे। जहां जो अर्थ घटित होना चाहिए वो आपको ढूंढना है, जो अर्थ आप जानते हैं वो अर्थ आप नहीं लगाएंगे, जो अर्थ वहां हो सकता है छिपा हुआ वो अर्थ आपको कैसे मिले, निरुक्त इस काम को करता है। और इसलिए मतलब निरुक्त पढ़ने से मतलब वेद का संबंध क्या है ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। जब जिस दिन आपने निरुक्त पढ़ा होगा, अभी तो आपने शुरू किया है ना, जिस दिन आप इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो पांचवें छठे पाद में, मतलब दूसरे अध्याय के पहले पाद में जब एक बात कहता है निर्वचन करने की, वो निर्वचन को उतना महत्व देता है जितना आप व्याकरण को नहीं दे सकते। तो वो ये कहता है कि कोई भी जब अर्थ करते हो तो अर्थ करते समय जो बात आएगी, एक तो ये आएगी जो हम समझते हैं वो आएगी, लेकिन प्रश्न ये है कि यहां है क्या, वो कैसे आएगी, वो आने का तरीका निर्वचन है। और वो निर्वचन बिना निरुक्त के हमें समझ में आता नहीं, इसलिए निरुक्त के साथ जब हम वेद की बात करते हैं, जैसे आज हमने मंत्रों को देखा, तब हमें समझ में आता है भाई व्याकरण में कितनी गति हो तब काम चलता है, उसके बाद निरुक्त कितनी गति हो तब काम चलता है। और यदि आप स्वतः समझ सकते हो तब वेद आपको कैसे समझा सकता है। मतलब ऋषि दयानंद में जो चिंतन का प्रकार है ना, क्या होता है, ये सब चीजें आपको एक रास्ता बताती हैं, पूर्णता कोई नहीं बताता। एक ऊहा पैदा करने की योग्यता आपके अंदर प्रस्तुत हो जाती है, फिर अब जब आप पढ़ते हैं तो होना क्या चाहिए ये आप, क्योंकि इसमें हम मन को क्या मानते हैं, समस्त सामर्थ्य युक्त मानते हैं ना, यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवार, तो हमारा सारा जो ज्ञान है ये वो ढक्कन जो है ना अज्ञान का, उसके उखाड़ने के काम आता है। वो आवरण यदि हट गया तो तुरंत ये चीज हमारी समझ में आ सकती है, आ जाती है। इसलिए पारोवर्य वित्सु खलु वेदी त्रिषु भूयः विद्या प्रशस्यो भवति, जो व्यक्ति जितना अधिक जानता है हमारे में वही श्रेष्ठ क्यों होता है? हमारी श्रेष्ठता की जो पहचान है वो जितना अधिक जो जानता है, और जितना अधिक जो जानता है वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तो निरुक्त ने एक बड़ी रोचक बात लिखी है, जो चार जो प्रयोजन लिखे हैं ना निरुक्त के, अब आगे पढ़ोगे, पढ़ा नहीं है, तो जहां पहला प्रयोजन है स्वार्थ साधकम, तो निरुक्त का उद्देश्य जो है वो है वेदार्थ की सिद्धि, मतलब आपको वेद पढ़ना, वेद का अर्थ समझना आना चाहिए, ये निरुक्त का प्रयोजन है। और उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उसने दो प्रयोजन जैसे और बता दिए हैं, एक पद विभाग वाला, एक देवता परिज्ञान वाला, वो आप विस्तार से उसमें पढ़ोगे। लेकिन एक अंतिम प्रयोजन है कि आप ज्ञानी कहला कब सकते हैं, वो कहता है कि ज्ञानी अब तब बन सकते हैं या ज्ञानी अब तब कहला सकते हैं जब आपको निरुक्त आता हो, भवति ज्ञान प्रशंसा अज्ञान निंदा च। वो कहता है ये निरुक्त से आता है, ये सबसे रोचक बात है। वैसे तो हम ये समझते हैं कोई भी शास्त्र पढ़ता है तो ज्ञानी हो ही जाता है, तो मूल चीज क्या है कि निरुक्त पढ़ता है तो ज्ञानी कैसे होता है। तो मूल बात यह है कि यहां विकल्प जितने हैं उनमें कौन सा विकल्प घटित होगा, इसका निश्चय निरुक्त से होगा। अर्थ बहुत है शब्दों के, लेकिन कौन सा अर्थ यहां लगेगा यह निरुक्त से होगा। तो इस दृष्टि से जब आप निरुक्त पढ़ के देखोगे, और जितना विस्तार से हमारे आचार्य जी पढ़ाते हैं इतना तो नहीं हमने पढ़ना पढ़ा ना पढ़ाया, क्योंकि सारी चीजें उपस्थित होकर पढ़ना अलग चीज है और उसको खंडशः पढ़ना अलग चीज है। निरुक्त को मैंने तो व्याकरण पहले पढ़ा फिर भूल गया, फिर निरुक्त पढ़ा वो भी भूल गया। अब आप पूछोगे ये भी पता है कि व्याकरण कुछ कुछ है कुछ कुछ निरुक्त है, तो इसलिए मामूली सा पता चलता है, लेकिन जब आप सब उपस्थित रख कर पढ़ोगे तब वास्तविक पढ़ना होगा। और ये चलो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बहाने से आप जब निरुक्त को इस तरह से पढ़ोगे तो ये पता लगेगा कि निरुक्त पढ़ना क्यों चाहिए और ऋषि दयानंद का अर्थ क्यों ठीक है। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि वो परमेश्वर हमारी रक्षा करे, रक्षा करे नहीं, वो तो करता तो है ही, तो वो कैसे करे। अरे भाई वो जो करेगा वो आप थोड़े ही करोगे, आपको जो करना चाहिए वो करो, उस लायक आप बनो। भगवान हमको इस योग्य बनावे कि जो भगवान ने व्यवस्था बनाकर दी है उस व्यवस्था को बनाए रखे, हम क्या करते हैं उस व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। तो जब अर्थ करते हैं जैसे प्रार्थना की बात कही, मतलब मूल बात को इस शब्द को मैं बहुत स्थूल रूप में कहता हूं, प्रार्थना का अर्थ और कुछ नहीं है, प्रार्थना का अर्थ किया जाने वाला प्रयत्न है। कभी वो मौखिक होता है कभी वो लिखित होता है। किसान कहता है कि मेरे खेत में गेहूं पैदा हो, क्या यह प्रार्थना है उसकी, कैसे पूरी होगी
जब वो बोएगा,
बोए तो वो प्रार्थना का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रार्थना, अब इसको दूसरी तरह से समझो, आपके यहां ज्ञान के जो स्तर हैं वो कौन से हैं, पहला है आपका स्तुति, दूसरा है प्रार्थना और तीसरा है उपासना। इसको आप दूसरे रूप में कह दो, ज्ञान कर्म उपासना। केवल अब यहां समझना कितना आसान है, बराबर बीच में दो शब्द कहां हैं, प्रार्थना और कर्म। तो ये प्रार्थना और कर्म एक ही चीज है, दो नहीं। ज्ञान कर्म उपासना में ज्ञान से उपासना तक पहुंचने की जो चीज है वो सीढ़ी कौन है, कर्म है। तो फिर स्तुति प्रार्थना उपासना में स्तुति से उपासना तक पहुंचने की जो चीज है वो कौन है,
कर्म।
तो प्रार्थना और कर्म में अंतर क्या हुआ वो दोनों एक ही चीज है, कहने का प्रकार अलग अलग है। इसलिए हमारे यहां जब वेद का विषय की बात करते हैं तो किसी भी चीज का ज्ञान पहले, कर्म बाद में, परिणाम जो है वो उपासना है। तो इसलिए प्रार्थना का मतलब मैं कहूं और वो हो जाए, प्रार्थना वो प्रक्रिया जिससे होता है, हाथ जोड़ने से होता है हो जाए, बोलने से होता है हो जाए, कुम्हार को क्या करने से होता है और किसान को क्या करने से होता है और सुनार को क्या करने से होता है, उनकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं। तो वो प्रार्थना के बिना उपासना तक पहुंचेगा कैसे। तो इस बात को जब आप इस तरह से समझेंगे ना, शब्द के रूढ़िगत अर्थ को आप दिमाग में रखकर बात करते हैं तो आपको संदेह पैदा होता है। अब अपने यहां साहित्य में एक विचित्रता है कि जो अर्थ बिल्कुल अनुपस्थित है उसको वो पकड़ता है, वो सबसे बुद्धिमान होता है। और वो अर्थ कौन सा होता है, वो व्यंजनागत अर्थ होता है। जो व्यंजनागत अर्थ होता है वो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन वो उपस्थित के माध्यम से आता है, वो उपस्थित के माध्यम के बिना नहीं आता। उपस्थित तो चाहिए लेकिन अर्थ की प्रतीति जो होगी ना वो अनुपस्थित की होगी। तो वैसे ही निरुक्त जो है हमारे सामने जो शब्दगत अर्थ है, जो अभिधा से आने वाला अर्थ है, उस अर्थ से ऊंचे जो अर्थ यहां व्यंजनागत, वहां व्यंजना व्यंग मात्र है, यहां व्यंजना जो उसमें अभिप्रेत मात्र है, वो अर्थ की प्रतीति इसके द्वारा होती है, इसलिए इसका महत्व है। बहुत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम बैठने का मुझे बहुत लाभ होता है क्योंकि न तो मैं शतपथ पढ़ा भाई और न मैं मीमांसा पढ़ा, और व्याकरण मुझे पढ़ा जरूर था, याद कुछ भी नहीं। मेरे तो इसलिए है कि कभी कभी पन्ने पढ़ लेता हूँ, इससे ज्यादा मुझे आता है।
आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनचर्या आदि सब ठीक चली रही होगी, तो जो भी साथ में बैठने का और तो अवसर होता नहीं है, तो जो भी यहाँ के दिनचर्या नियम हैं तो उसका सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि नियम हमारी उन्नति के कारण बनते हैं, इस बात का भी आप सब ध्यान रखें। और हमारा पाठ तो सभी को पता है बंद हो गया था, तो आचार्य जी ने हमें निमंत्रण दिया, यहाँ सारी व्यवस्था दी, तो आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारा धन्यवाद तो तब है जब पढ़ कर जाओ, मतलब ऐसा है आ गए ये तो अच्छी बात है, पढ़ रहे हो ये ठीक बात है, लेकिन पढ़ने के इसको पढ़ने के बाद जब आप इसको किसी को पढ़ाओगे या स्वयं कुछ लिखोगे पढ़ोगे, वो है धन्यवाद की बात।
जी धन्यो अहम इति वदति इति धन्यवाद।
तो हमारा तो एक ही है, ऋषि दयानंद का जो एक काम है वेद को जीवित रखना, ब्राह्मण है ना
निष्कार,
पंक्ति खाली याद करने की नहीं है। इस पंक्ति से मुझे तीसरी क्लास से प्रेम है।
अच्छा जी।
जब महावाश्य का नाम भी नहीं सुना था मैंने, और इसको बोला था मुनि देवराज हुआ करते थे हमारे गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक
जी
देवराज विद्यावाचस्पति, उन्होंने अपने भाषण में पढ़ बोला था और मैं उस समय तीसरी कक्षा में पढ़ा था
जी।
उस समय से ये पंक्ति मुझे याद है, पढ़ी तो बाद में है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्येय ज्ञेयश्च। अब इतनी सी याद रख लो, बाकी तो हो जाएगा जो होना है। बस निष्कारणो धर्म, तुम्हें क्या सुविधा मिली क्या नहीं मिली, करने से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मतलब वेद मिलेगा ये सबसे बड़ी उपलब्धि है
जी।
इसके बाद कुछ शेष रहता हो तो देख लो, मैं तो मुझे तो कभी लगता नहीं कि इसके बाद कुछ शेष रहता है, ये अनुभव होगा तो उस दिन होगा निष्कारणो धर्म। ठीक है,
तो एक बार ओम का उच्चारण।
विद्वान होने से बड़ा विद्वानों के साथ रहना है, समझे? तुम इतने सारे विद्वान होके जाओगे तो हमको भी लगेगा यार बड़े विद्वानों के बीच में रहे हम।
डाली दो।